Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Samitava Salmi Matao, Isnime Veno, Aap Sarup Bandho. Taittiriya Upanishad ko lekar ke उपासना विषय प्रसंग चल रहा है, जिसमें उस परमात्मा के प्रतीक ओंकार को लेकर के ओंकार को ही परमात्मा का रूप समझते हुए उसकी उपासना का यहां विधान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्रमशः पहले संहिता प्रकरण की चर्चा करते हुए संधि की चर्चा की कि संहिता क्या है, संधि क्या है और किस प्रकार से जीव उस परमात्मा से संधि को प्राप्त हो, ऐसी पूर्व में चर्चा की गई। और संधि शब्द को आप जानते हैं, संधि कहाँ होती है, तो वहां संकेत किया गया अजवर अव्यवहिता है संहिता संज्ञा स्यात्, मनुष्यों से रहित या स्वरों के विवधान से रहित जो परस्पर पूर्व और उत्तर के वर्ण होते हैं वहां पर संधि होती है या संगीता होती है, ऐसा संकेत किया। ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत करने जा रहे हैं कि जहां पर जीव और उस ईश्वर के, जीव और उस परमात्मा के बीच में कोई विवधान नहीं होता है, तो जब व्यवधानों से रहितता हो जाती है तो उस जीव और ईश्वर की संधि हो जाती है। अब व्यवधान किसका है, तो संकेत किया गया अज्ञान आदि भ्रम या भ्रांति आदि का ही व्यवधान होता है। उस व्यवधान की रहितता हो तो उस व्यवधान को पहले हमें समझना चाहिए, और व्यवधान को समझने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो संकेत किया उसके लिए विवेकशालिनी बुद्धि या मेधा से संपन्न बुद्धि जब हमारे पास होती है तब हम उस विवधान को विवधान रूप से समझने में समर्थ होते हैं। इसलिए संहिता की चर्चा करने के पश्चात मेधा के लिए प्रार्थना की गई, मेधा की कामना की गई, और जब मेधा से संपन्न हुआ तो मेधा से संपन्न होने पर फिर संकेत किया गया कि श्री की प्राप्ति हो, श्री की कामना की गई। मेधा के प्राप्त होने पर भी, बुद्धि के प्राप्त होने पर भी, ग्राह्य ग्राहकता आने पर भी उस ग्रहण किए हुए पदार्थ में एक प्रकाश होना चाहिए या एक विवेक होना चाहिए। इसलिए उस विवेक के लिए या उस सामर्थ्य के लिए, उस बल के लिए श्री की कामना की गई, और स्थूल रूप से मेधा आदि में भी सहायक क्या है, तो संकेत किया गया कि जब तक हमारे पास संपदा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो हमारी सौष्ठवता शारीरिक रूप से भी नहीं होगी, और शारीरिक रूप से नहीं होगी तो अंतःकरण की भी नहीं होगी, और अंतःकरण की भी जब नहीं होगी तो जो मेधा है वो मेधा से संपन्न बुद्धि भी नहीं होगी। इसलिए श्री की कामना की चर्चा की गई, और इस प्रकार से क्रम से श्री, मेधा और संगता की चर्चा करते हुए फिर संकेत किया कि हमारा जीवन कैसा हो, तो हमारा जीवन यशस्वी हो, यशपूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए, अपयशपूर्ण हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में मने जो है लोकापवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकापवाद भी हमारे जीवन में क्या करता है, तो हमारी बुद्धि को विचलित करता है। इसलिए लोकापवाद से भी रहता होना चाहिए। जब लोकापवाद नहीं होगा, हमारा जीवन यशपूर्ण होगा, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध प्रसन्न होगा, और शुद्ध अंतःकरण जो होगा, प्रसन्न अंतःकरण होगा, तो उस अंतःकरण के द्वारा ही हम उपासना करने में समर्थ होंगे। लोक के अंतर्गत देखें, प्राणी जब भी किसी भी कर्म को करता है तो उस कर्म को करने के लिए क्या चाहिए? तो संकेत किया, कार्जी समर्थः अधिकारी। किसी भी कर्म को करने के लिए कार्जी समर्था अधिकारी, ये तीन चीजें उसमें होती हैं, तब वो कर्म को करने में समर्थ होता है और कर्म से होने वाले फल को प्राप्त करता। तो अब कार्जी का मतलब क्या है? कार्जी का मतलब है कर्म करने की इच्छा, माने वह उस कर्म को करना चाहता है अथवा नहीं करना चाहता। पहले तो कर्म को करने की हमारे अंदर अभिप्सा होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। और मान लीजिए कर्म करने की इच्छा है लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं, तो इसलिए ही श्री की कामना की बुद्धि के द्वारा कर्म करने की इच्छा होगी और इच्छा होने पर सामर्थ्य भी चाहिए। जब तक सामर्थ्य नहीं होगी तब तक हम कर्म करने में समर्थ नहीं, इसलिए श्री की भी कामना की यहां चर्चा की गई। तो समर्थ सामर्थ्य क्या है? तो सामर्थ्य के लिए संकेत किया, यदि हम श्रेष्ठ कर्मों को करना चाहते हैं, यज्ञ आदि कर्मों को करना चाहते हैं और विशेष फल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यज्ञ रूप कर्म जो है वो यज्ञ रूप कर्म वगैरह संपदा के, वगैरह द्रव्य के संपन्न हो सकते नहीं। तो इसलिए वहां पर जो है हमारे पास द्रव्य चाहिए, और द्रव्य जब होता है तब हम उस कर्म को करने में समर्थ होते हैं, इसलिए कार्जी समर्था। अब मान लीजिए किसी के अंतर्गत उस कर्म को करने की इच्छा है क्योंकि उसके फल को वह चाहता है और सामर्थ्य भी है, लेकिन सामर्थ्य होने पर भी क्या है? अधिकारी नहीं, अधिकारी नहीं है। अर्थात मोटे रूप से समझे, जैसे लोक के अंतर्गत आप देखते हैं लोग कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, बैठने की इच्छा है और उस पद पर जाने की भी इच्छा, और उसके अनुसार उन्होंने अध्ययन भी किया, उसके अनुसार उनके अंदर योग्यता भी है, सामर्थ्य भी। तो अब उसको लेकर के उनकी इच्छा भी है और इच्छा के साथ साथ सामर्थ्य भी है, लेकिन क्या नहीं है उसके अधिकारी का? क्यों अधिकारी नहीं? कहने लगे आरक्षण चल पड़ा ना, अब जो है उसके अंदर योग्यता है, इच्छा भी है, लेकिन वहां नियम क्या कर दिया? अधिकारिता किसको दे दी? कहा इस पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही बैठेगा। तो अब इच्छा होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी उसके अंतर्गत उसकी अधिकारिता नहीं, इसलिए वह उस फल को प्राप्त भी करने में समर्थ नहीं हो। ये संकेत किया। ठीक इसी प्रकार से तो लोक का दृष्टांत हो गया। शास्त्रों के अंतर्गत भी चर्चा आती है, जहां पर शांडिल्य विद्या के अंतर्गत जहां यज्ञों का विधान किया गया, उन यज्ञों के विधान में राजसूय यज्ञ का वहां पाठ किया गया, राजसूय यज्ञ का वहां प्रकरण आया। अब राजसूय यज्ञ कौन करे? तो उसके लिए अधिकारता की दृष्टि से कह दिया कि राजसूय यज्ञ क्षत्रिय ही कर, राजा ही कर सकता। अब जो है अन्य वर्ण रह गए, ब्राह्मण रह गया, वैश्य रह गया, तो उनके लिए तो वहां अधिकारता ही नहीं। यदि उनके पास करने की इच्छा हो और उसके अनुसार सामर्थ्य भी हो, लेकिन वहां उनकी अधिकारता का निषेध कर, इसलिए उस राजसूय यज्ञ को करने के लिए कौन है? तो क्षत्रिय ही कर सकता। लेकिन वहीं पर उस राजसूय के प्रसंग में ही फिर चर्चा की अवेष्टि नाम की यज्ञ। अब अवेष्टि नाम की यज्ञ कौन करे? तो तीनों वर्णों के लिए उसका अधिकार है, तीनों वर्ण उस अवेष्टि नाम की यज्ञ को कर सकते हैं। और यज्ञ को करने की जो प्रक्रिया है वो भी क्रम से एक ही है, लेकिन कितना अंतर है? तो अधिकारी के अनुसार अंतर करते, वहां द्रव्य का अंतर नहीं है, क्रिया का अंतर नहीं है, लेकिन वहां अंतर किस चीज का है? तो वहां संकेत किया, यदि ब्राह्मण उस यज्ञ को करता है अवेष्टि नाम की यज्ञ को, तो ब्राह्मण के लिए वहां पर अधिकारता को लेकर के विधान किया कि वह उस चरु का जो है अर्पण करेगा। चरु एक ही है, तीनों के लिए चरु में कोई भेद नहीं। जो चरु निर्माण चरु का जिन पदार्थों से होता है वही पदार्थ हैं, और उस चरु का वह जो है उसके लिए जो है अर्पण करता है। लेकिन चरु का अर्पण करते हुए भावना में अंतर बतला दिया। क्या कहा कि जब ब्राह्मण आहुति देगा तो ब्राह्मण उस चरु में भावना क्या करेगा, उसकी भावना क्या होनी चाहिए और किस देव विशेष को उस चरु का वह अर्पण करेगा। तो वहां संकेत कर दिया बाहरस्पति, बाहरस्पति देव के लिए वह उस चरु का होम करेगा या आहुति देगा। अब वहीं पर यदि क्षत्रिय कर रहा है तो चरु वही है, क्रिया भी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जब वह उसकी आहुति देता है तो उसकी भावना का अंतर होता है। वह भावना क्या करता है तो ऐन्द्रिय देव के लिए वह उस चरु को अर्पण करता, इंद्र देवता के लिए उस चरु का वह अर्पण करता। और जो वैश्य उस यज्ञ को करता है तो वह क्या भावना करता है, किस देव की भावना करता है और किस भावना को लेकर के वह उस चरु का अर्पण करता है। तो वहां संकेत कर दिया वैश्वदेव, वह वैश्वदेव की भावना करते हुए उसी चरु को अर्पण करता और उस भावना के अनुकूल ही उन तीनों को भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती। क्रिया एक ही थी, कर्म एक ही था और द्रव्य भी एक था, ठीक है ना। क्रिया का व्यापार भी एक जैसा था, लेकिन एक जैसा होने पर भी फल में भेद हुआ। फल में भेद किसको लेकर के हुआ तो उसके द्वारा जो उस चरु में और उस देव में जो की गई भावना, उस भावना के बल पर ही क्या हुआ का तीनों के फलों में भेद हो गए। ठीक इसी प्रकार से यहां संकेत करते हैं कि यहां पर भी जो उपासना है वो उपासना में प्रधानता किसकी है, कर्म को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं, व्यापार को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं, लेकिन उपासना में जरूरत किस चीज की है? उसे कर्म क्यों नहीं कह दिया, उसे उपासना ही क्यों कहा? इसलिए कहा कि उस कर्म में जहां पर भावना का परिवर्तन हो जाता है तो भावना ही उपासना कहलाती है। इसलिए आपने मेहमन स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य के अनुसार वर्णित इस श्लोक को सुना होगा, कृतौ सुप्ते जागृत तुमस कृतमताम क्रियायोगे कृतमताम कर। तो जहां पर हम जो यज्ञ आगादि या जो श्रेष्ठ कर्म करते वहां सामान्य कर्म की चर्चा नहीं, क्रतु शब्द का प्रयोग, क्रतु शब्द है यज्ञ का वाचक। तो जब हम किसी श्रेष्ठ कर्म को करते हैं लेकिन श्रेष्ठ कर्म को करते हुए वह कर्म तो जो है क्या है सुप्तौ, कर्म सदा तो होता नहीं, कर्म तो एक काल एक देश विशेष में और वस्तु के को लेकर के किया जाता है और वो जो है गति जो है सदा चलती नहीं। तो कर्म जो है वो फिर क्या होता है, कर्म करने के बाद उस कर्म का अवसान हो जाता है या वो सो जाता है या उसकी परिसमाप्ति हो जाती है। तो कृतौ सुप्ते जागृत तुमस क्रियायोगे कृतमताम, संकेत किया कि कर्म के सुसुप्त हो जाने पर, कर्म के शांत हो जाने पर, अब जब कर्म शांत हो गया तो फल देने वाला कौन, तो क्या कहा जागृत तुमसी। वहां संकेत किया भगवान शिव के विषय में है कि वह परम शिव जो है या परम देव जो है वो क्या है वहां जागता रहता और वही उस क्रिया के योग को कराने वाला होता। तो क्रिया तो शांत हो गई, कर्म शांत हो गया, लेकिन कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, उसका तो अदृष्ट बनता है, अपूर्व बनता है और उस अपूर्व के अनुसार उस अदृष्ट के अनुसार फिर जाके कालांतर में उसके फल की प्राप्ति होती। तो फिर उस फल को देने वाला कौन, क्योंकि कर्म की सत्ता तो रही नहीं। तब संकेत कर दिया कि वहां पर वह परम देव है वो जागता है। अब कहने लगे परम देव जागता रहता है तो परम देव उसका फल देता, तो लोगों की शिकायत भी रहती, अरे ईश्वर है बड़ा अन्यायी है, अरे पड़ोसी को तो उसने जो है सुखी शांत प्रसन्न बना दिया और हमको जो है दुखी कर दिया, अशांत कर दिया, ये संकेत करते। लेकिन आप विचार करो, क्या यदि ये ऐसा परमात्मा करने लगे तो सारा दोष किस पर आ गया? परमात्मा पर आ गया। लेकिन सारे शास्त्र संकेत करते हैं कि परमात्मा सारे दोषों से, परमात्मा निष्पाप, अपाप अविद्धम इत्यादि करके उसको संकेत किया, पाप से रहत है, और ये भी कह दिया कि क्रिया से भी वह निष्क्रिय भी। और जब परमात्मा इन सबसे रहत है, और गीता आदि में भी आप पढ़ते हो, समस्त शास्त्रों का अभिप्राय वहीं पर है, न दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु, परमात्मा किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता, किसी के पुण्य को ग्रहण, मानस के अंतर्गत भी कर दिया, यद्यपि समन ही रागन रोसु गहेन पाप पुण्य गुण दोषु, न किसी के पाप को ग्रहण करता है न किसी के पुण्य को ग्रहण कर, ये सब संकेत परमात्मा के लिए। फिर जहां पर संकेत करते हैं कि वह परमात्मा जो है उसके फल को देने वाला है, तो ये फिर कैसे, जब वही फल को देता है तो शुभ अशुभ सारे फल देने वाला कौन हो गया? कहा परमात्मा। तो कहने लगे दुष्टों को दुष्टता का फल देता है और जो है सज्जन है उन्हें सज्जनता का फल देता है, तो कम से कम भेद तो हो गया, एक दुष्ट है तो उससे द्वेष करता है और एक जो सज्जन है उससे प्रेम करता है, तो परमात्मा में भी जहां प्रेम करता वहां राग आ गया और जहां द्वेष करता है वहां द्वेष आ गया दुष्टों के प्रति, तो परमात्मा कैसा हो गया? कहा राग द्वेषी। लेकिन उसके लिए कहा परमात्मा न राग वाला है न द्वेष वाला है, उपासना उसकी करनी है तो कैसे समझ करके करना है? तब संकेत क्या किया, आप लोक में देखते हैं कर्म के तीन रूप माने, क्या? एक दुष्ट कर्म या अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म, और तीसरा रूप एक और माना। कहा तीसरा कहां से आ गया? शुभ अशुभ इन दो कर्मों से हम परिचित हैं, इन दो कर्मों को हम जानते हैं, लेकिन तीसरा कर्म भी कह दिया यहीं पर, वो कर्म क्या है? तो एक अशुभ कर्म, दूसरा शुभ कर्म, और तीसरा कर्म कह दिया गया स्वाभाविक कर्म। उसे क्या संज्ञा दी गई? स्वाभाविक कर्म। तो एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है, एक स्वाभाविक कर्म होता है। अशुभ कर्म का फल जो है अशुभ के कर्म के अनुसार मिलता है, शुभ कर्म का फल जो है शुभ कर्म के फल के कर्म के अनुसार मिलता है, और स्वाभाविक कर्म का फल, इसी की विशेषता। आप संकेत से समझ लो, ये स्वाभाविक कर्म ही है उपासना, या इसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं। जिसे हमने स्वाभाविक कर्म कहा वह स्वाभाविक कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है, और स्वाभाविक कर्म ही उपासना कहलाता है। अब निष्काम कर्म क्या करता है? आप लोग सुनते रहते हो, निष्काम कर्म का कार्य क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करना। हमारी मेधा के सामने जो भी विविधान है, हमारी मेधा के सामने जो भी पर्दा है, उस पर्दे से रहित उस मेधा को करना, उस विविधान से रहित करना, ये काम किसका है? कहा निष्काम कर्म का, या उसी को कहें उपासना। तो उपासना का कार्य क्या है? उपासना जो है हमारे पर्दे को हटाता है, हमारे विविधान को हटाता है, और उपासना इस प्रकार से हटा करके उस मेधा को, उस अंतःकरण को शुद्ध करता है, माने उस मेधा को जो है पवित्र करता है, निर्मल बनाता है, और जहां निर्मलता होती है, तो क्या कहा? इन संकेत वास्य में किया, जैसे आदर्श तले प्रखे, जहां पर शुद्ध आदर्श होता है, माने शुद्ध दर्पण होता है, और उसमें जब हम देखते हैं तो क्या होता, तो हमारा चेहरा उसमें स्पष्ट दिखाई देता, तो क्या दिखलाई देता है? चेहरा ही चेहरे को देखता है। ध्यान देना, वहां पर क्या देखते हो? जब शुद्ध दर्पण होता है तो उस शुद्ध दर्पण को आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? चेहरे के द्वारा चेहरे को ही देखते हैं। ऐसे ही संकेत किया, अंतःकरण रूपी दर्पण जब शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और निर्मल है माने विवधान से रहित है, और जब विवधान से रहित है, निर्मल है, तो उस अंतःकरण में क्या देखे जाएगा? तो आत्मानम आत्मनि पश्यति, वहां पर अपने को ही और अपने में ही देखता, ये विशेषता। और यही उपासना का प्रयोजन है, यही उपासना का उद्देश्य है। इसलिए क्रम से जो है मेधा श्री आदि की कामना की चर्चा करते हुए और फिर क्रम से जो है संकेत किया, तो वहां पर भी स्मृति कहती है कि क्या होता है? कर्म के द्वारा क्षयात् पापस्य कर्मण, कर्म के द्वारा हमारे पापों का, अवरोधों का क्षय होता है। जब अवरोधों का क्षय हो जाता है, पापों का क्षय हो जाता है, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध अंतःकरण मेधा से संपन्न होता हुआ, और फिर जो है उस जिस परमात्मा को या जिसकी हम उपासना करते हैं, जिस उपास्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस उपास्य से हम अपनी संधि करना चाहते हैं, उससे हमारी संधि हो जाती है या उसकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा संकेत वहां किया। तो यहां पर भी जो संकेत कर रहे हैं कि एक दुष्ट कर्म और एक जो है अदुष्ट कर्म अर्थात अशुभ और शुभ कर्म, और एक स्वाभाविक कर्म। स्वाभाविक कर्म का नाम है उपासना। अब देखो, फल देने की परमात्मा के अंदर न तो दुष्टों से कोई द्वेष है और न अदुष्टों से कोई राग है, वो राग द्वेष से रहित है। और राग द्वेष से रहित होकर के फल देने वाला, यदि राग द्वेष पूर्वक वह फल देगा, दुष्टता को लेकर के फल देगा या अदुष्टता को लेकर के फल देगा, तो परमात्मा कैसा कहलाएगा? पक्षपाती। परमात्मा कैसा कहलाएगा? पक्षपाती। लेकिन परमात्मा कैसा है? का निष्पक्ष, निरपेक्ष, वो किसी प्रकार की किसी से कोई अपेक्षा रखने वाला नहीं, ऐसा संकेत किया जाता। लेकिन फिर यहां पर कैसे समझे? तो देखो, एक मोटा उदाहरण है, उसे समझो। आप देखते हो ये जो मसानी लोग होते हैं ना, और दुकान के सामने क्या करते हैं? पीठ में कोड़े मारते हैं, सिर को जमीन में मार देते हैं, चाकू मार लेते हैं, इस प्रकार की घटनाएं करते हुए सामने दिखाते हैं। अब दुकानदार देखता है, लेकिन दुकानदार देखता है और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर दुकानदार की कोई उसके प्रति रुचि नहीं, और वो उसे कुछ देना भी नहीं चाहता, जानता है कि ये तो हमारा जो है अपात्र है और व्यर्थ में जाएगा। लेकिन ये चाहते हुए भी वह दुकानदार क्या करता? कई लोग खड़े हो गए, लोग भी कहने लगते, अरे भाई कुछ दो है, और वो ऐसी क्रिया कर रहा है दुष्टपने की। तो क्या करता है दुकानदार? वो कहता है, इस बवाल को टालो यहां से, और कुछ न कुछ दे देता। तो अब वहां उसने अपनी किसी कामना से या इच्छा से नहीं दिया, या किसी उद्देश्य को रख करके नहीं दिया, केवल बवाल टालने के लिए दे दिया, ठीक है ना। परमात्मा भी, आप लोग कहते हो महाराज हैं इतने घोटाले हो रहे हैं, फिर भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं, हम लोग बड़े सज्जनता से विधि के अनुसार कानून के अनुसार चलते हैं, तो हम लोग धक्के खा रहे, वो झूठ बोलता है वो बढ़ता जा रहा है, हम लोग सत्य बोलते हैं लेकिन हम लोग हैं। तो क्या मतलब बताया? कि ऐसे ही लोगों को केवल परमात्मा भी अनिच्छा से है, वो दुष्ट कर्म करने वालों को क्या करता? अनिच्छा से देता, वो उसकी कोई वहां इच्छा नहीं, उपरांता से वह देता है, ऐसा संकेत समझ लो। और जो शुभ कर्म करने वाले हैं तो उनको उस शुभ कर्म के परिणाम के अनुसार देने वाला, ठीक है, ये संकेत किया। और जो स्वाभाविक कर्म करने वाले हैं तो उन्हें भी मिलता, लेकिन कैसे मिलता है? तब वहां पर क्या, कृतौ सुप्ते जागृत तुमश फल योगे, संकेत कर दिया। अब जो है कहने लगे इसके अनुसार देता है, फल से योग कराता है, तो फिर संकेत किया क्व कर्म प्रध्वस्तम, कर्म तो नष्ट हो गया, कर्म के नष्ट होने के बाद फिर कैसे, तब संकेत कर दिया फलत पुरुष आराधन मृते, तो पुरुष की आराधना के बगैर नहीं मिलता, वहां कैसे मिलता है, तो पुरुष की साधना, पुरुष की भावना, पुरुष की आराधना के अनुसार ही उसे फल मिलता है। परमात्मा अपनी तरफ से न कोई इच्छा रखता है, न दुष्ट के प्रति, न अदुष्ट के प्रति, न जो है साधु के प्रति, न असाधु के प्रति, न पापी के प्रति, न पुण्यात्मा के प्रति, लेकिन फिर भी उसके भावना के अनुसार वहां उसे फल मिलता। तो अब जो है कर्म में भी फल की प्राप्ति वो किसके अधीन हो गई, मात्र कर्म के अधीन नहीं, कर्म में वैविध्य भी है और कर्म में एकता भी है। तो वैविध्य कर्म के अनुसार जो है वो कर्म विविध विविध करता है, तद अनुकूल भी उसे फल मिलता है, लेकिन फल कर्म में भी, विविधता में भी, भावना के अनुकूल मिलता है।